लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन आचरण द्वारा सुसमाचार का साक्ष प्रस्तुत करे तथा प्रभु ख्रीस्त के प्रेम संदेश को जन जन में फैलाने के मिशन के प्रति वचनबद्ध रहे। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है। यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। ईश्वर से मिले जीवन के वरदान को मनुष्य योग्य रीति से ग्रहण करे तथा अपने कल्याण के लिए प्रज्ञा और विवेक के साथ इसका सदुपयोग करे, यही इस ग्रंथ का आग्रह है। दुष्ट के घर पर प्रभु का अभिशाप पड़ता है, किंतु प्रभु धर्मी के घर को आशीर्वाद देता है। प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता और दीनों को अपना कृपा पात्र बना लेता है। बुद्धिमान लोगों को सम्मान मिलेगा और मूर्खों का तिरस्कार किया जाएगा। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के तीसरे अध्याय के अंतिम दो पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में सूक्ति ग्रंथ का लेखक इस बात को रेखांकित करता है कि ईश्वर से आने वाली प्रज्ञा और विवेक अनमोल है, और जो व्यक्ति ईश प्रज्ञा से प्यार करता है वह लाभान्वित होगा, उस पर ईश कृपा और ईश्वर की आशीष सदैव बनी रहेगी। इन पदों से स्पष्ट है कि प्रभु ईश्वर द्वारा मिली प्रज्ञा विवेक और बुद्धि का सही उपयोग कर व्यक्ति शुभ सुंदर और सत्य के दर्शन कर सकता है। बुद्धि का सही उपयोग उसे प्रभु की आशीष और कृपा का पात्र बना देता है। इन पदों में यह भी कहा गया है कि दुष्ट व्यक्ति प्रभु के लिए घृणित व्यक्ति है, उसका तिरस्कार किया जाएगा, इसलिए उसकी नकल कदापि न की जाए। श्रोताओ, दुष्ट कितना ही सुखी और समृद्ध दिखाई दे, आंतरिक तौर पर वह कभी भी सुखी नहीं होता। उसके मन में कभी भी शांति नहीं हो सकती। उसकी आत्मा सदैव बेचैन रहा करती है और हर प्रकार के तनाव से वह घिरा रहता है। दुष्टों की विरासत शर्म की बात होगी, जबकि बुद्धिमान और विनम्र की नियति ईश्वर की महिमा है। वे ईश्वर के प्रेम और ईश्वर के आशीर्वाद से अनुग्रहित होंगे। श्रोताओ, यह यही दर्शाता है कि घमंड ईश्वर को हमारे विरुद्ध खड़ा कर देता है, जबकि विनम्रता ईश कृपा को आमंत्रित करती है। प्रज्ञा और विवेक से काम लेने वाले व्यक्ति ईश्वर की महिमा के उत्तराधिकारी बनेंगे। वे केवल ईश्वर की महिमा के फल ही नहीं भोगेंगे, अपितु उस महिमा में भागीदार बनेंगे। संत पेत्रुस अपने पत्र के पांचवें अध्याय में प्रभु सेवकों को परामर्श देते हैं, आप संयम रखें और जागते रहें। ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया है। और बाइबल आचार्य वोल्टके का कहना है, मूर्ख अर्जित करते हैं या फिर कमाते हैं, उनकी अशिष्टता के कारण उन्हें विरासत में कुछ भी नहीं मिलता।
शरण प्रभु गुरु येसु मम, शरण प्रभु गुरु येसु,
शरण प्रभु गुरु येसु मम, शरण प्रभु गुरु येसु।
येसु मम शरण प्रभु गुरु येसु।
आगे सूक्त ग्रंथ के चौथे अध्याय में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि प्रज्ञा सर्वोपरि है। इसके प्रथम पांच पद इस प्रकार हैं: पुत्रो, पिता की शिक्षा पर ध्यान दो, समझदार बनने का प्रयत्न करो, मैं तुम लोगों को ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, मेरी शिक्षा का तिरस्कार मत करो, मैं भी अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, मेरी माता मुझे इकलौते पुत्र की तरह प्यार करती थी, मेरे पिता ने मुझे यह कहते हुए शिक्षा दी, सारे हृदय से मेरी शिक्षा अपनाओ, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम्हें जीवन मिलेगा, प्रज्ञा और समझदारी प्राप्त करो, मेरे शब्द याद रखो और उनसे नहीं भटको। श्रोताओ, सूक्त ग्रंथ का चौथा अध्याय भी इस ग्रंथ के पहले अध्याय के समान ही बुद्धिमान राजा सुलेमान द्वारा पुत्र को दिया गया परामर्श है। बुद्धिमान पिता अपने पुत्र से कहता है कि धर्मी का मार्ग उस उषा काल के सदृश है जो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे तेज और प्रकाशमान होता जाता है, जबकि दुष्ट ऐसे लोगों के समान होते हैं जो अनवरत और भी गहरे अंधकार में ठोकर खाते रहते हैं। इसीलिए उसका परामर्श है कि व्यक्ति इन बातों को अपने हृदय में संजोकर रखे, क्योंकि इन्हीं से वह स्वस्थ रहेगा, इन्हीं से वह मन की चंगाई और जीवन प्राप्त करेगा। वस्तुतः सूक्ति ग्रंथ के चौथे अध्याय के अनुसार व्यक्ति अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ज्ञान प्राप्त करता है। अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे सावधान और निरंतर चौकस रहना पड़ेगा। उसे अपने पिता की शिक्षाओं पर ध्यान देना होगा, अपने माता और पिता के अनुभवों और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को देखकर, उनकी बातों को सुनकर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हर युग में और समाज की हर कोटि, पद और हर श्रेणी के बुद्धिमान और धर्मपरायण लोग इस बात से सहमत हैं कि सच्चा ज्ञान आज्ञाकारिता में निहित रहा करता है और सच्चा ज्ञान ही सुख का स्रोत होता है। श्रोताओ, सच तो यह है कि सच्ची बुद्धि और अनुग्रह के बिना हमारी आत्मा एक मृत आत्मा है। वे लोग कितने कंगाल और कितने अभागे हैं जो अपनी तमाम धन दौलत और सामर्थ्य के बावजूद यीशु मसीह में आशा और ईश्वर के आशीर्वाद के बिना ही इस संसार से चले जाते हैं। हम चौकस हो जाएं, माता पिता और बुद्धिमान लोगों की बातों पर कान दें और ईश नियमों का अनुपालन करते हुए अनंत जीवन के मार्ग पर अनवरत आगे बढ़ते जाएं। आगे चौथे अध्याय के 6 से लेकर 9 तक के पदों में पिता पुत्र से कहता है, प्रज्ञा का परित्याग मत करो, वह तुम्हारी रक्षा करेगी, उसको प्यार करो और वह तुम्हारी देखरेख करेगी। सबसे पहले प्रज्ञा प्राप्त करो, किसी भी कीमत पर सद्बुद्धि प्राप्त करो, इसे संजोए रखो और वह तुम्हें महान बनाएगी, इससे लिपटे रहो और यह तुम्हें सम्मान दिलाएगी, यह तुम्हारे कंठ में एक मनोहर माला डाल देगी और तुम्हें महिमा का किरीट प्रदान करेगी। गौर करें, जो लोग शिक्षित होते हैं, जिन पर समाज के निर्देशन और मार्गदर्शन की जिम्मेदारी रहा करती है, वे वास्तव में शिक्षा और ज्ञान के अर्थ और इसके महत्व को तो समझते हैं, तथापि इसे केवल अपने परिवारों और संतानों के लिए उपयोगी मानते हैं। अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, वे समाज में प्रतिष्ठित हों और उनका पद ऊंचा से ऊंचा हो, यही उनकी मनोकामना और उनके प्रयास हुआ करते हैं। ऐसा इसलिए कि व्यक्ति स्वभाव से ही स्वार्थ परत होता है, वह पहले अपना भला देखता है और फिर अन्यों की सोचता है। हालांकि बुजुर्गों ने कहा है कि उदारता को अपने ही घर से शुरू होना चाहिए, तथापि अन्यों के प्रति हमें अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलना चाहिए। उदारता को घर से शुरू अवश्य होना चाहिए, किंतु इसे वहीं पर खत्म नहीं हो जाना चाहिए। यही है यथार्थ प्रज्ञा, यही है सद्बुद्धि, जिसे हासिल करने का सूक्ति ग्रंथ हम सबसे आग्रह करता है। सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, प्रज्ञा को हासिल करो और उसे संजोए रखो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि यही तुम्हें सम्मान दिलाएगी, यही तुम्हारे कंठ की मनोहर माला होगी और तुम्हें महिमा का किरीट प्रदान करेगी।
शरण प्रभु गुरु येसु मम, शरण प्रभु गुरु येसु,
शरण प्रभु गुरु येसु मम, शरण प्रभु गुरु येसु,
शरण प्रभु गुरु येसु मम, शरण प्रभु गुरु येसु,
शरण प्रभु गुरु येसु मम, शरण प्रभु गुरु येसु,
शरण जगत गुरु येसु मम, शरण जगत गुरु येसु,
शरण जगत गुरु येसु मम, शरण जगत गुरु येसु,
शरण जगत गुरु येसु मम, शरण जगत गुरु येसु,
शरण जगत।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज कैथोलिक कलीसिया रोजरी की माता मरियम का पर्व मनाती है। संत पापा फ्रांसिस ने इस पर्व की ओर विश्वासियों का ध्यान आकर्षित करते हुए अपने ट्वीट संदेश में रोजरी माला विनती करने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, आज कलीसिया पौत्र रोजरी की माता मरियम का पर्व मनाती है। मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूं कि इस प्रार्थना को करें, अपने आप को मरियम द्वारा येसु उनके बेटे की ओर अग्रसर होने दें। कलीसिया की परंपरा के अनुसार अक्टूबर माह में रोजरी माला विनती की विशेष भक्ति की जाती है। पोप फ्रांसिस ने बृहस्पतिवार 7 अक्टूबर को संत एरेनियस ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक संयुक्त कार्यकारी दल को संबोधित किया। संत एरेनियस ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक संयुक्त कार्यकारी दल के सदस्य इन दिनों रोम में अपनी वार्षिक सभा में भाग ले रहे हैं। संत पापा ने कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स के बीच संपर्क की इस शास्त्रीय सेवा के लिए अपना आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा, आपके विशिष्ट कार्य से मैं चकित हूँ, जो एक साथ ऐसे कार्यों की तलाश करना चाहता है जिससे विभिन्न परंपराएं अपनी पहचान खोए बिना एक दूसरे को समृद्ध कर सकें। विविधताओं से समृद्ध एकता को विकसित करना अच्छा है, जिससे एक निरस्त एक रूपता का प्रलोभन नहीं आएगा। इस तरह उनके विचार विमर्श का केंद्र है, किस तरह हमारी परंपराओं की पृथकता को सराहा जाए, ताकि यह असहमति बढ़ाने की अपेक्षा साझा प्रेरित विश्वास को व्यक्त करने के लिए वैध अवसर बन सके। संत पापा ने उनके दल के नाम की सराहना की, जिसको आयोग्य समिति नहीं बल्कि कार्यकारी दल की संज्ञा दी गई है। दल में सदस्य भ्रातृत्व की भावना से एकत्रित होते एवं विभिन्न देशों और कलीसियाओं के विशेषज्ञ वार्ता में भाग लेते हैं, जो एकता के लिए एक साथ प्रार्थना करना और अध्ययन करना चाहते हैं। संत पापा ने कहा कि दल के संरक्षक लियोन के संत एरेनियस, जो आध्यात्मिक एवं ईश शास्त्रीय रूप में पूर्वी और पश्चिमी कलीसियाओं के बीच एक महान सेतु हैं, उनके नाम एरेनियस में शांति शब्द शामिल है। हम जानते हैं कि प्रभु की शांति एक समझौता की शांति नहीं है, जो हितों की रक्षा के लिए किए गए समझौतों का फल है, बल्कि एक ऐसी शांति है जो मेल मिलाप से आती है, जो एकता में एक साथ लाती है। यही येसु की शांति है। संत पौलुस कहते हैं, ख्रिस्त हमारी शांति हैं, जिन्होंने हमें एक किया है और विरोध के हर प्रकार की दीवार को तोड़ डाला है। संत पापा ने कार्यकारी दल से कहा, ईश्वर की कृपा से आप भी दीवारों को तोड़ने और एकता के सेतु के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। संत पापा ने दल को एकता के लिए काम करने हेतु धन्यवाद दिया, खासकर प्रधानता और धर्म सभा के बीच संबंध पर पुनर्विचार करने के लिए। उन्होंने कहा, वार्ता के निर्माणात्मक धारे के द्वारा, विशेषकर ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के द्वारा, हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि कलीसिया में प्रधानता और धर्म सभा एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं है, बल्कि संतुलन रखने के लिए दो वास्तविकताएं हैं। जो एक दूसरे को एकता की सेवा में स्थापित और सुदृढ़ रखती हैं। संत पापा ने आगामी सिनर द्वारा सभी क्रिस्त समुदायों के साथ एकता की उम्मीद करते हुए कहा, मैं दृढ़ विश्वास करता हूं कि ईश्वर की कृपा से सिनर प्रक्रिया जो आने वाले दिनों में सभी कार्तिक धर्म प्रांतों में शुरू होगा, अन्य क्रिस्त समुदायों के साथ इस आयाम पर गहरे चिंतन का अवसर होगा। उन्होंने उन्हें धन्यवाद देते हुए अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया तथा उन पर ईश्वर की आशीष की कामना की। संत पापा फ्रांसिस ने रोम के लातेरन विश्वविद्यालय में अध्ययन के नए चक्र का उद्घाटन किया, जिसको कुस्तुंतुनिया के प्राधिधर्म अध्यक्षालय और यूनेस्को के संयोजन में पारिस्थितिक और पर्यावरणीय मुद्दे को समर्पित किया गया है। अपने भाषण में संत पापा ने रेखांकित किया कि पारिस्थितिक संकट की जटिलता के लिए जिम्मेदारी ठोस होने और क्षमता की आवश्यकता है। प्राधिधर्म अध्यक्ष बर्थोलोमियो प्रथम और यूनेस्को के निदेशक ऑन्ड्रे अजाउले की उपस्थिति में संत पापा फ्रांसिस ने सख्त चेतावनी दी, जब कोप 26 शिखर सम्मेलन निकट आ रहा है, जागरूकता बढ़ी है कि जो क्षति हम ग्रह को पहुंचा रहे हैं वह जलवायु, जल और मिट्टी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब पृथ्वी का जीवन ही खतरे में है। संत पापा ने कहा कि इसके सामने यह पर्याप्त नहीं है कि उन सिद्धांतों के बयानों को दोहराया जाए जो हमें अच्छा लगता है। पारिस्थितिक संकट की जटिलता वास्तव में जिम्मेदारी, ठोस कार्य एवं कार्य कुशलता की मांग करती है। रोम के परमतम पीठ लातेरन विश्वविद्यालय में लोगों को संबोधित करते हुए संत पापा ने विश्वास एवं विज्ञान कार्यक्रम की याद की, जो इसी सप्ताह वेटिकन में आयोजित थे। कार्यक्रम में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उन्होंने बतलाया कि वे एक वैज्ञानिक के शब्दों से प्रभावित हुए, जिन्होंने कहा कि मेरी पोती जिसका जन्म पिछला महीना हुआ है, उससे एक ऐसे विश्व में जीना होगा जो रहने योग्य नहीं रहेगा यदि हम चीजों को नहीं बदलते हैं। सीखने की जगह से बोलते हुए संत पापा फ्रांसिस ने विश्वविद्यालय के मूल मिशन पर प्रकाश डाला, जहां विद्यार्थी और विभाग एक साथ आकर चिंतन करते एवं नए रास्तों पर आगे बढ़ने के लिए रचनात्मक रूप से कार्य करते हैं। पारिस्थितिक चेतना बनाने और आम घर की रक्षा के लिए अनुसंधान विकसित करने का प्रयास विश्वविद्यालयों से होकर गुजरता है। संत पापा ने इस बात को भी रेखांकित किया कि शैक्षणिक क्रियाकलाप को प्रकृति के वैभव को सुरक्षित रखने के लिए एक अभिन्न पारिस्थितिक बदलाव को बढ़ावा देने के पक्ष में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सबसे पहले प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच आवश्यक एकता को धार्मिक, दार्शनिक एवं नैतिक प्रतिबिंब द्वारा प्रस्तुत की गई एकता के पुनर्निर्माण के द्वारा, ताकि न्यायिक मानदंडों और एक अच्छी आर्थिक दृष्टि को प्रेरित किया जा सके। संत पापा ने अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को को पारिस्थितिक एवं पर्यावरण के पहल के लिए सक्रिय ध्यान देने हेतु धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, यह एक रास्ता है जो कुस्तुंतुनिया के प्राधिधर्म अध्यक्षालय के साथ एक खुले दृष्टिकोण से मिलकर कार्य करेगा, जो ख्रिस्ती कलीसियाओं, विभिन्न धार्मिक समुदायों और गैर विश्वासियों के ध्यान का स्वागत करेगा। अतः संत पापा ने जोर दिया कि अध्ययन चक्र अनुभवों और विचारों का एक मिलन बिंदु हो, जो वैज्ञानिक अनुसंधान की पद्धति के द्वारा उन्हें एक साथ लाएगा। इस तरह यूनिवर्सिटी न केवल ज्ञान की एकता की अभिव्यक्ति को दिखाता, बल्कि यह एक अनिवार्यता का भी भंडार है, जिसका कोई धर्म, विचारधारा या सांस्कृतिक सीमा नहीं होता। सिस्टर जेसी मरिया ग्रामीण जीवन में महिलाओं की रचनात्मकता के पुरस्कार के लिए जेनेवा स्थित WWSF द्वारा चयनित 10 अंतिम प्रतिभागियों की सूची में शामिल हैं। उन्होंने हमेशा कमजोर लोगों के साथ काम किया है तथा पर्यावरण की रक्षा में सहयोग दिया है। सिस्टर जेसी मरिया झारखंड में बेथानी की लिटिल फ्लावर की धर्म बहनों के धर्म संघ की सदस्य है। और इसी के साथ हिन्दी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।